कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनयनाय नंदगोपालकुमाराय गोविंदाय हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगत गोपेश गोपिकाकांत राधा राधा तप्त कंचन राधे राधे रावणी रावणी श्री कृष्ण प्रभु श्री हरे कृष्ण 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 हरे राम राम भगवत गीता सातवां अध्याय सातवां श्लोक मत परतरम बहुत अद्भुत श्लोक आया है आज मत परतरम नान्यत कश्चित असति धनंजय ये श्लोक दो चीजें हमें बहुत क्लियर कर देते हैं एक भगवान श्री कृष्ण के विषय जो भी कंफ्यूजन है अज्ञानता के कारण या मिसगाइड होने के कारण वो दूर हो जाती दूसरा श्री कृष्ण स्वयं परम सत्य है इस बात का यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाता है बहुत क्लियर कट बात है इसमें किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कृष्ण स्पष्ट करते हैं मत परतम न अन्यत कश्चित असति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्र मणिगणा एव अब मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इस पे कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत अब बाकी रह जाए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और एक बात याद रखिए ये जो सत्संग है ये आप तो सुनने का माध्यम हो बल्कि आपके द्वारा लाखों लोगों तक ये सत्संग पहुंचती है इसलिए मैं मात्र आप ही को नहीं ध्यान में रखता हूं परंतु उन लाखों लोगों को ध्यान में रखता हूं जो हमसे जुड़े हुए हैं आप ये बात समझ चुके हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर और परम सत्य है लेकिन हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों को यह समझना बाकी हो इसलिए इन श्लोकों के द्वारा उन सब लोगों को संदेश दिया जाता है जो अभी तक अज्ञानता के सागर में डूबे हुए हैं और वो भगवान की परम सत्य की वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं और भगवान की परम सत्यता की वास्तविकता यह है कि कृष्ण परम सत्य है एक तो वो परम सत्य है और परम सत्य क्यों है कृष्ण न अर्ध सत्य है कृष्ण न सत्य है समझ लीजिए बात बल्कि कृष्ण क्या परम सत्य है परम सत्य का मतलब हुआ जिसके परे फिर कुछ ना हो और यहां कृष्ण स्पष्ट करते हैं हां मत परतरम मुझसे परे न अन्यत कश्चित असती धनंजय और कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे परे कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार ये सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। चंद्र, सूर्य, पवन, आकाश, धरती, अग्नि, प्रकाश, ग्रह, नक्षत्र, देवता, गंधर्व, किन्नर और न जाने क्या कुछ, वो सब कृष्ण से है। वो सब किससे है? कृष्ण से। कृष्ण से परे कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, देखिए, आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, आपकी श्रद्धा कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन जो परम सत्य है वो अपनी जगह है। और परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता चाहो तो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ सकते हो कि कृष्ण ही परम सत्य है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन के द्वारा हम सबों को 11वें अध्याय में अपने विश्व रूप के विषय समझाया, जिसमें अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा कहीं ब्रह्मा जी है, कहीं मां सरस्वती है, कहीं गायत्री है, कहीं सावित्री है, कहीं कौन और कहीं शिव के 11 रुद्र, मां पार्वती, भगवान भोलेनाथ, सब कुछ भगवान में ही विराजमान है, उनसे परे कुछ नहीं है, उनसे परे कुछ नहीं है। और ये बात अन्य ग्रंथों में भी आई है, मैं पेख्यो मोहन सबसे ऊंचा, एको कृष्णम सर्वदेवा, एको कृष्णम सर्वदेवा देव देवात आत्मा, आत्मा वासुदेवास्मी, जेको जाने भेउ, नानक ताको दास है सोई निरंजन तेउ। एक कृष्ण जो भगवत गीता में 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया, यहां पर भी कहा एक ही कृष्ण में सारे देवी देवता समावेश होकर गए। इसलिए जब हम श्री कृष्ण की श्री चरणों का आश्रय लेकर, मैं बिल्कुल आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता हूं, क्लियर कट कर देता हूं कि भगवत गीता का ये श्लोक बिल्कुल स्पष्ट है और आगे जाके कृष्ण ने अपना फाइनल वर्डिक्ट, कहते हैं ना आखिरी फैसला, फाइनल वर्डिक भगवत गीता में दे दिया, सर्वधर्मान प्रत्याज, छोड़ो सब। एक संत ने अपने भाव विभोर होकर कहा, गोविंद आपने हमें कहीं का नहीं रहने दिया। क्या कहा? हे कृष्ण प्यारे, आपने हमें कहीं का नहीं रहने दिया। मतलब अगर हम संसार में यह शब्द का उपयोग करें कि कहीं के नहीं रहे, मतलब बर्बाद हो गए। संसार में यदि यह शब्द का उपयोग हो कि कहीं के नहीं रहे, मतलब बर्बाद हो गए। और यहां जो महापुरुष कहते कि हे गोविंद तुमने हमें कहीं का नहीं रहने दिया। यहां अर्थ बनता है, हे कृष्ण आपने हमें अपना लिया, अब हम ना कहीं के हैं ना किसी के हैं, ना कहीं के हैं जी ना किसी के हैं। क्यों? ना कहीं के हैं और ना किसी के हैं क्यों? मतलब जहां के थे वहीं के हो गए, इसलिए अब हम कहीं के नहीं रहे। बहुत भाव समझने का आ रहा है। व्यासासन अद्भुत 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 बातें करते हैं। व्यासासन अद्भुत, ना कहीं के रहे मतलब जहां के थे वहीं के हो गए, ना किसी के रहे क्योंकि जिसके थे उसी के हो गए। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया और प्यार ही में खो गया। तो हम किसके थे? हम किसी के नहीं हुए। समझिएगा मेरी शब्दों पे ध्यान देना, हम किसी के नहीं हुए, हम उसी के हुए हैं जिसके हम थे। ममैवांछ जीवलोके जीवभूत सनातन। बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण जो है हमारे सनातन संबंधी है और कृष्ण ही हमारे सनातन सारथी है। इसलिए कहीं के ना रहे। क्यों? कि ये श्लोक क्या कह रहा है, सर्वधर्मान प्रत्यायजे, तुम्हें मैं कहीं का नहीं रहने दूंगा। हालांकि संसार में यदि ये कोई कहे तो ये बहुत नेगेटिव बात हो जाती कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा, लेकिन यहां कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा। क्यों? कि तुम जहां के हो वहीं के हो जाओ, ना मैं तुम्हें किसी का रहने दूंगा क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे ही हो जाओ। और यही बात समझने की, बस एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, बस इतना समझ लो कि ना हम कहीं के हैं और ना हम बोलो किसी के हैं। हम कहां के हैं? जिस देश में कृष्ण रहते हैं हम वहां के हैं। हम कहां के हैं? जिसके लिए कृष्ण ने कहा, न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पावक कहा यत गत्वा निर्वतन्ते तदधाम। हम वहां के हैं। और हम किसके हैं? ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, एक बात याद रखना, जो लोग भी संसार में हम पे दावा करते हैं, क्या कहा, क्या कहा, जो लोग भी संसार में हम पे दावा करते हैं, क्या दावा करते हैं, तुम मेरे हो, पहली बात तो उसको यही नहीं पता कि तुम किसे कहते हैं। वो तुमसे मतलब कौन, तुमसे मतलब कौन, क्योंकि वो तुम जिसे कहते हैं वो हम है ही नहीं। पता है वो तुम किसे कहते हैं? इस शरीर को कहते हैं। जो हम हैं वो तो उनको पता ही नहीं है। तुम मेरे हो, तुम वो किसे कहते हैं? इस शरीर को कहते हैं। और इस शरीर पे तो न जाने कितने लोग दावा करते हैं, बचपन में दावा किया माँ बाप ने कि ये बच्चा मेरा है। फिर थोड़े बड़े हुए तो रिश्तेदारों ने दावा किया ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, ये मेरा नाती है, ये मेरी नातिन है। फिर और बड़े हुए तो दोस्तों ने दावा किया ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। फिर बहुत कुछ नजदीक आ गए तो कहने लगे तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा यार ना, बहुत घनिष्ठ हो गए। फिर आगे बढ़ते 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 एक वक्त आया जब किसी ने कहा ये मेरा पति है और किसी ने कहा ये मेरी पत्नी है, दावा ठोका। फिर कुछ समय के बाद किसी ने कहा ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा दामाद है। फिर और आगे गए किसी ने कहा ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है। दावे सबों ने किए लेकिन अंत में हमें रखा किसी में नहीं। जैसे ही शरीर से आत्मा निकली जितने लोग दावा करने वाले थे वही कह रहे हैं अब इसको ले जाओ, अब ले जाओ। बहनों माताओं मित्रों ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। संसार की कितनी बड़ी कड़वी सच्चाई है। बहनों माताओं मित्रों स्त्री चाहती है कि वो अपने पति के साथ एकांत में रहे, अकेले रहे। समझना, लेकिन जब उसके पति का शरीर छूट जाता है, जब उसके पति का शरीर छूट जाता है, उसका पति मर जाता है और कभी रात को सपने में भी पति आ जाए तो डर के मारे उठ जाती है। ये सच्ची बात बताऊं, बहुत बरस पहले एक माता मेरे पास आई और मुझे कहने लगी बापू मैं घर में अकेली होती हूं, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने बोला क्यों डर लगता है? बोला मुझे मेरा पति दिखता है और वो ऐसे ऐसे मुझे बुलाता है। ये सच्ची बात बता रहा हूं। और बोला मुझे बहुत डर लगता है। याद रखना हमारे मरने के बाद हम किसी के सपने में भी गए तो वो हमसे डरेंगे। वो अकेले उस घर में भी रहे, घर तो छोड़ो उस कमरे में भी अकेले नहीं सो पाएंगे। मैं फिर आपको एक सत्य का उदाहरण देता हूं। बहुत समय की बात है मैं एक घर में गया था, वहां उनके बेडरूम में मुझे लेके गए घुमाते घुमाते, वहां उसकी पत्नी का एक बहुत ही अच्छा फोटो कोई 20x30 का इतना बड़ा करके सामने लगाया था उसने। समय के बाद कुछ बहुत समय बीता तब वो स्त्री मर गई और कुछ समय के बाद फिर मुझे बुलाया, मैं उनके घर गया, वहां से वो फोटो गायब था। मुझे याद था, मैंने कहा यहां वो फोटो था कहां गया? बोले बापू मैं जब सोता हूं ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो आंखें निकाल रही है। मैं सही कहूं मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे लगता है जैसे उसकी कभी चूड़ियों की आवाज आ रही है, कभी पायल की आवाज आती है और कभी ऐसे लगता है जैसे वो जोर जोर से हंस रही है, और मैं सही कहूं मैं डर जाता हूं, इसलिए मैंने वो फोटो वहां से हटा दी। बहनों माताओं मित्रों, हम जब मर गए ना, तो जो भी आज हम पे दावा करते हैं, वो दावा करने वाले उस चादर में भी नहीं सोएंगे जिस चादर को ओढ़ के हम मरे होंगे। मुझे एक आदमी ने कहा, एक कड़वी सच्चाई आई, मुझे कहा बापू एक सवाल पूछूं। मैं वो पूछूं, बोला जब कोई मर जाता है तो जिस बिस्तर में वो स्त्री सोई होती है उस बिस्तर को क्या करते हैं? मैं बोलो ना क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फिर उसमें कोई सोता क्यों नहीं, जबकि रोज ही तो उसी बिस्तर में सोते? फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उस बिस्तर में कोई सोने को तैयार नहीं? समझना एक एक बात को, मैं कथा के साथ साथ व्यथा भी कहता हूं। मैंने बोला वो फेंक देते हैं। बोला फिर वो जो चादर ओढ़ी होती वो? मैंने बोला वो भी फेंक देते हैं। फिर बोला वो जो पिल्लों पे सर होता है, भाई बोलो ने, वो भी फेंक देते हैं। फिर बोलो बापू वो जो कपड़े पहने होते हैं वो? मैं वो भी फेंक देते। बोला फिर वो जो जेवर पहने होते हैं वो जो डायमंड की चूड़ियां, कान में डायमंड, बहुत मोटा सारा मंगलसूत्र, अंगूठियां और बहुत सारा सोना वो पहना होता है तो वो? मैंने कहा बेटा वो फेंकते नहीं, वो दूसरी के लिए रख देते हैं, जो परम सत्य है। इस कड़वे सच को मानना पड़ेगा कि जो हम पे दावा करते हैं वो एक दिन हमें उठा के फेंकते हैं। मुझे एक गाना बहुत याद आ रहा है, कहो तो सुना था। उसमें मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। वो गाना कुछ इस तरह से था, बरसात बरसात के मौसम में लोग गाते भी हैं, सुनते भी हैं, कि कहा अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, और जब दिल भर गया तब। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता? जब दिल भर गया तब, और दिल तो जरूर भरेगा ही जब हमारे फीचर फिगर बिगड़ जाएंगे। दिल तो उसी समय भर जाएगा जब हमें टीबी कैंसर की बीमारी हो जाएगी। दिल तो उसी समय बिगड़ जाएगा जब हमारे चेहरे की झुर्रियां आ जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, मुंह के दांत गिर जाएंगे, बात करेंगे तो बत्तीसी गिरेगी बाहर, सर की चोटी जो नागन की तरह है बुढ़ापे में चूहे की दुम जैसी हो जाएगी। फिर बेटा ये गाना गाना, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी अभी तो आए हो। फिर कहोगे कभी क्या आए हो, 50 बरस हो गए, 30 बरस हो गए, कभी क्या आए हो। इसलिए ये विनोद की बात है लेकिन सत्य है कि जो हम पे दावा करते हैं वो यही नहीं पता है। जो कहते हैं तुम मेरे हैं, तो तुम से मतलब क्या हुआ? तुम से मतलब शरीर, और शरीर आज तक किसी का नहीं हुआ। जैसे ही शरीर समाप्त होता है वो जिसका है उसी का हो जाता है, यानी पांच तत्व, पंच महाभूत अपने अपने में समा जाते हैं। वायु वायु में गई, अग्नि अग्नि में गई, पृथ्वी पृथ्वी में गया, जल जल में गया, और आकाश आकाश में गए। वो तुम तो जहां से आया था वहां चला गया और आत्मा को ये पहचानते नहीं है, तो तुम मेरे हो, तुम कहते किसको हो, तुम कहते किसको हो। और ये जो तुम है ये बदलता रहता है, कल कैसा ये शरीर था, आज कैसा ये शरीर है और कल कैसा शरीर हो जाएगा। मैं परसों तरसों एक हीरोइन को देख रहा था, पहचानने में नहीं आई, पहचान भी नहीं सकते हो, बुढ़ापे में उसकी ऐसी हालत हो गई। तो ये शरीर जिस पे हम दावा करते हैं, एक मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक व्यक्ति एक लड़की की बहुत तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, ये तुम्हारे बाल जो है सावन की घटाएं हैं। लड़की बहुत समझदार थी, बोला वाकई मेरे बाल अच्छे लगते हैं। बोला चरिया ये नकली है, ले तुम्हें मेरे बाल अच्छे लग रहे थे, मैं अच्छी नहीं लग रही थी, तो ले लो। ऐसे ही किसी को किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी को किसी के नाक अच्छे लगते हैं, किसी को किसी की चाल अच्छी लगती है, किसी को किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी को किसी का रंग अच्छा लगता है, लेकिन किसी को किसी का जो तुम है उसका तो पता ही नहीं है। वो तुम कौन है उसको पहचानने के लिए सत्संग में आना जरूरी है। वो तुम कौन है उसी के लिए कृष्ण कहते हैं ममेव वंश, वो है तुम। ये शरीर तुम नहीं है, ये शरीर तुम नहीं है, क्योंकि ये शरीर, एक याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, यही शरीर जो आज हमें खुश करता है। जवानी में हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं बाहर जाने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तक मिरर के सामने खड़े रहते हैं और हर एंगल से अपने आप को देखते हैं, हर एंगल से देखते हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, फिर किसी से पूछते हो मैं ठीक लग रही हूं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये दुपट्टा सही है, मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया, अब इससे ज्यादा क्या हो, इससे ज्यादा क्या हो, फिर भी बोलते हैं मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया। जो चेहरा कभी कभी ऐसे होता है, जो जिंदगी का एक सच है कि कभी कभी खुद ही को देखते हैं और खुद ही को अच्छे लगते हैं, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, बोलोगे नहीं लेकिन हुआ होगा, कभी खुद ही को देखते हैं और खुद ही को अच्छा लगते हैं, फिर खुद ही कमेंट्स भी देते हैं अपने आप ही को। याद रखना, जिस चेहरे को देखकर आज हम बहुत खुश होते हैं, कल बुढ़ापे में वही चेहरा हमें डराएगा, हम आईना देखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, तब कहते दर्पण डराने लगा, क्या दर्पण डराने लगा, शायद हम आईना, ऐसे कई बूढ़े लोग हैं जो 15-15, 20-20 दिन तक आईना देखते ही नहीं है, क्योंकि अब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बहनों माताओं मित्रों, कृष्ण कहते हैं तुम उस परम सत्य को जानो जो तुम हो, और तुम कौन हो, ममी वंश, मेरे अंश हो तुम, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है ना तुम कहीं के रहो ना तुम किसी के रहो। इसीलिए कहा गया ये श्लोक पढ़ के, हे गोविंद तुमने ना हमें कहीं का रखा ना हमें किसी का रखा, और ये सही है, हम ना कहीं के हैं हम ना किसी के, जिसके हैं उसी के हो गए, समझ लेना जीवन सफल हो गया। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यदि ऐसे ही मर गए, ऐसे ही मर गए, जन्म लिया, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, बीमार हुए, बूढ़े हुए और अंत में मर गए, उस बीच 2-4-5-10 करोड़ कमा लिए, उस बीच 2-4-5 प्रॉपर्टियां बना ली, उस बीच कुछ बच्चों की शादियां हो गई, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं कर सके आप। और वो काम क्या था? जिस वखर को लेण तू आया, जिस शब्द को लेने आए थे वहां गए ही नहीं, क्योंकि वो किसी दुकान, किसी फैक्ट्री, किसी मॉल में नहीं है। राम नाम संतन घर पाया, संतन का घर, संतों का घर सत्संग होता है। याद रखना, जब भी हमें सद्गुरु की प्राप्ति हुई है तो सत्संग से हुई है। सद्गुरु की प्राप्ति सत्संग से, और सत्संग से ही भगवान की प्राप्ति होती है। सांवरिये से मिलने का सत्संग ही हुआ, यही एक रास्ता। इसलिए जिसने जीवन में सत्संग नहीं की, जिसके जीवन में कृष्ण भजन नहीं हुआ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, उसका मतलब हुआ अपना जीवन विफल गवाया। क्या गवाया? विफल गवाया, अनसक्सेस फुल पर्सन, अनसक्सेसफुल पर्सन, बिल्कुल नाकाम असफल व्यक्ति हो गया जिसने कृष्ण भजन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण शरण नहीं लिए। अभी भी मौका है, सुबह का भोला शाम को आ जाए तो अच्छा है, रात होने से पहले पहले। इसी विषय को कल लेके चलते हैं। नित्य वजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल जय 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 राधे जय 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 राधे जय 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 राधे।